ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. ஆஜ் கா விஷய் பஹத் ஹி சுந்தர் ஹை. ஃபீச்சர்ஸ் சே குஷ்நுமா ஃபியூச்சர், தோனோ ஹி அங்கிரேஜி கே ஷப்த் ஹை. ஃபீச்சர் கா அர்த்த ஹோதா ஹை ஹமாரே நயே நக்ஷ், ஃபீச்சர். ஓர் ஃபியூச்சர் கா மத்லப் ஹோதா ஹை பவிஷ்ய. தோ ஹமாரே ஜோ நயன் நக்ஷ் ஹை, வோ ஆனே வாலி நயீ துனியா கோ பிரத்யக்ஷ கரே. கோயி ஹமாரா சேஹரா தேகே தோ உசே அஹ்சாஸ் ஹோ கி யே உஸ் சத்யுகி துனியா கி விஷேஷ ஆத்மாயே ஹை. ஹம் பாபா கி ஜீவன் கஹானி படத்தே ஹை தோ பாத்தே ஹை கி பாபா கா சாரா ஜீவன் இசி சேவா மே கயா. ஜப்சே யஜ்ஞ கி ஸ்தாபனா ஹுயி, ப்ரஹ்மா பாபா நே அப்னே ஃபீச்சர்ஸ் சே ஃபியூச்சர் கோ பிரத்யக்ஷ கர்னா சாலு கியா. ஜப் பஹலி பார் பாபா கே தன் மே சிவ பாபா கா அவதரண ஹுவா, தோ ஹம் சப்னே சுனா ஹை கி பாபா அப்னே கமரே மே சலே கே. ஓர் பிரிஜிந்திரா தாதி நே பாபா கோ தேகா கி பாபா கா சேஹரா ஏக்தம் பிரகாஷ்மான் ஹை. ஓர் பாபா கே முக் சே சிவ பாபா நே அப்னா பரிச்சய தியா, ஜ்ஞான் ஸ்வரூபம் சிவோ அஹம் சிவோ அஹம், பிரகாஷ் ஸ்வரூபம் சிவோ அஹம் சிவோ அஹம், ஆனந்த ஸ்வரூபம் சிவோ அஹம் சிவோ அஹம். ஓர் உஸ்கே பாத் பாபா ஜப் அப்னே கமரே மே சே உட்கே பாஹர் ஆங்கன் மே ஆயி, தோ பரிவார் கே லோக் பாபா சே மில்னே கே லியே உத்சுக் தே. தோ சப் இக்கட்டே ஹோ கே ஓர் உன்னோனே ஜான்னா சாஹா கி பாபா அந்தர் க்யோ கே தே. லேக்கின் ஹுவா க்யா கி ஜிஸ்னே பி பாபா கே நேத்ரோ மே தேகா வஹி தியான் மே சலா கயா. தோ யே பாபா கி ஷுருவாத் தி ஃபீச்சர் கே த்வாரா ஃபியூச்சர் கோ பிரத்யக்ஷ கர்னே கி. ஜிஸ்னே பி நேத்ரோ மே ஜாங்கா, கோய் பைகுண்ட மே ராஸ் கர் ரா ஹை, கோய் லக்ஷ்மி நாராயண் கி ராஜகத்தி ராஜ தர்பார் தேக் ரா ஹை, கோய் ராதா கிருஷ்ண கா கேல் பால் தேக் ரஹா ஹை. ஓர் இஸ்கே பாத் தோ யே இத்னி சர்ச்சா ஃபைல் கை ஜோ பி சத்சங் மே ஆயா உசி கோ பாபா சே சக்சத்கார் ஹோனே லகி. தோ இஸ் வித்யாலய கி ஷுருவாத் ப்ரஹ்மா பாபா கே ஃபீச்சர்ஸ் சே ஹுயி. ப்ரஹ்மா பாபா ஹஜாரோ பச்சோ கே பீச் மே கடே பி நியாரே நஜர் ஆதே தே. உன்கி திருஷ்டி, உன்கி விருத்தி, உன்கா சால் சலன் ஏக்தம் ருஹானியத் சே சம்பன், யுனிக். ஓர் ஐசே மம்மா கா பி பாபா கீத் பனாதே தே, ஓர் மம்மா ஹார்மோனியம் பர் கீத் காதி தி. தோ ஜப் வோ ஓம் கி துனி லகாதி தி தோ பாய் பஹன் தியான் மே சலே ஜாதே தே. ஓர் கையோ கோ தோ மம்மா சே லக்ஷ்மி கா சக்சத்கார் ஹோதா தா. உன் பாய் பஹனோ கோ தபி பக்கா ஹோ கயா கி பாபா ஜாகே ஸ்ரீ நாராயண் பனேங்கே ஓர் மம்மா ஜாகே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி பனேங்கி. தோ மம்மா நே அப்னே ஃபீச்சர்ஸ் சே அப்னே பவிஷ்ய கா சக்சத்கார் சப்கோ கராயா. அப் பாபா கா வரதான் ஹை தத்துவம், ஜோ ப்ரஹ்மா பாபா நே கியா ஜோ மம்மா நே கியா வோ பச்சோ கோ பி கர்னா ஹை. அர்த்தாத் ஜேசே உன்னோனே அப்னே பவிஷ்ய ரூப் கா சக்சத்கார் கராயா, ऐसे कोई हमें देखे और हमसे उनको ये महसूसता आए कि ये भी सतयुग वाली आत्माएं हैं, मंदिर में जिनकी पूजा हो रही है, जिनकी आरती हो रही है, जिनको भोग लग रहा है, जिनके दर्शनों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये सब बैठी हुई आत्माएं वही हैं। हम ऐसा अनुभव करा दें, लेकिन ये ताकत हमारे में कैसे आई, मम्मा बाबा में ये शक्ति कैसे आई, हमें उनको फॉलो करना है। उसके लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी धारणाएं बताई हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक बार एक भाई सेवा केंद्र पर आया ज्ञान सीखने के लिए, तो बहन जी ने कहा कि आप ये ज्ञान सीखोगे तो देवता बन जाओगे। उसने कहा, अरे देवता भी कभी बना जा सकता है? बहन जी ने कहा, हाँ, दुनिया में लोग कोई अच्छा काम करता है तो कहते हैं ये तो बना बनाया देवता है। तो जब हम अपने संस्कार अच्छे बना लेंगे तो देवता बन जाएंगे। तो भाई ने पूछा, अच्छा संस्कार अच्छे कैसे बनेंगे? तो बहन जी ने कहा, आज के दिन आप सारा दिन ये याद रखो कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो शांति के संस्कार बन जाएंगे और क्रोध नहीं आएगा। और ऐसे रोज एक एक गुण का चिंतन करोगे, आज प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, तो वही संस्कार बन जाएगा। भाई ने कहा, ठीक है। तो वो उस दिन उसको स्टेशन पे अपने एक मित्र को रिसीव करने जाना था। रेलवे स्टेशन पे गया और वहां बहुत भीड़ थी, तो एक कुली के सिर के ऊपर कई सामान थे और भीड़ में उसका बैलेंस बिगड़ गया और सामान नीचे गिर गए। उसमें एक लोहे की ट्रंक भी थी, वो भी नीचे गिर गई और उस ट्रंक का जो कोना था वो इस भाई के पांव की उंगली को लगा, उंगली को चोट लगी और खून निकल आया। अब सुबह इसने मंत्र पक्का किया था कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बहन जी ने पक्का कराया था, तो गुस्सा तो नहीं किया, बस मन में सोचता रहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इतनी देर में वो कुली आया। अब कुली ने इसको ही डांटना चालू कर दिया कि तुम देख के नहीं चले इसलिए मैं गिर गया। तो आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा, अरे एक तो इसको चोट लगी, ऊपर से तू ही इसको डांट रहा है। और ऐसे कहके लोगों ने कुली को थोड़ा भला बुरा कहा और उसको मारने लगे। तो ये भाई कहता है, अरे बेचारे गरीब आदमी को मारो मत, ये सारा सामान इसके सिर पे रख दो, इसको जाने दो, नहीं तो इसको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो लोगों ने कहा, देखा, एक तो तूने इसको मारा, इसको चोट लगी, और फिर भी ये तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तो तू इससे माफी मांग। तो वो कुली कहता है, भाई साहब माफ कर दो, आप तो देवता आदमी हो। तो इसके मन में आया कि मैं देवता बनूंगा तो बाद में, पर कम से कम पहले दिन लोगों ने मुझे देवता कह तो दिया। मैंने एक दिन अभ्यास किया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और उसी दिन मुझे टाइटल मिल गया कि आप तो देवता आदमी हो। अगर मैं रोज एक एक गुण का अभ्यास करूं तो सचमुच एक दिन मैं देवता बन ही जाऊंगा, तो पक्का निश्चय हो गया उसको। तो अब देवता बनने के लिए अपने किस फीचर से अपने को क्या प्रत्यक्ष करना है उसकी चर्चा करेंगे। जब मंदिर की देवियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो पांव से लेकर के सिर तक, नख से लेकर शिख तक बहुत श्रृंगारी हुई है। तो ये स्थूल श्रृंगार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पहले आत्मा का श्रृंगार किया, हर अंग को गुणों से सजाया और इसलिए वो दर्शनीय मूर्त बन गई। तो हम भी एक एक अंग को कैसे गुणों से सजाएं जिससे दर्शनीय मूर्त बने, हमारा आने वाला नया युग लोगों के सामने प्रत्यक्ष हो। तो चलिए सिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले है मांग। मांग भरते हैं ना, देवियों की भी मांग भरी रहती है। आप देखेंगे जो मांग है वो शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा है, ये वाला। और इस दुनिया के भी तीन लोक हैं, तो उस तीनों लोकों में सबसे ऊपर वाला हिस्सा ब्रह्मांड, जिसको बाबा मूल वतन कहते हैं, वो लाल सुनहरी रंग का है। और जो मांग भरी जाती है वो भी लाल रंग से भरी जाती है। और एक कहावत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा लाल सुनहरी है, तो इस पिंड का भी ये ऊपर वाला हिस्सा लाल रंग का है। तो ये मांग हमको परम धाम की लाली की याद दिलाती है। बिंदी तो काली, हरी, नीली, पीली भी लग सकती है, लेकिन मांग कभी लाल के अलावा दूसरे रंग से नहीं भरी जाती। उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, माथे से क्या प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते हैं आपको जो कोई देखे वो आपके माथे को देखे, लेकिन माथे को कोई तब देखेगा जब पहले हम मस्तक की स्मृति में होंगे। हमारी जैसी स्मृति होती है सामने वाले को वैसी आती है। तो अगर हम निरंतर आत्मिक भाव में होंगे तो लोगों को हमारे माथे का आकर्षण होगा, आत्मा को देखेंगे, हम भी आत्मा को देखेंगे, सामने वाला भी आत्मा को देखेगा। और जब आत्मा आत्मा को देखेगी तो क्या होगा, तो हमारा अविनाशी संबंध प्रत्यक्ष होगा। उसके बाद नीचे आइए, नयन। बाबा कहते हैं एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति। अब घर जाना है, ये पक्का पाठ है। और घर जाकर के फिर राजधानी में आना है, ये भी पक्का है। तो बाबा पूछते हैं घर कितनी दूर है, राजधानी कितनी दूर है, तो क्या उत्तर दें बाबा को। ऐसे लगता है कि बिल्कुल सामने है, बस गए की गए, देह छोड़ा और अपने घर गए और घर को टच किया और अपनी राजधानी में आई। तो हमारे दोनों नेत्रों से घर और राजधानी का साक्षात्कार हो, ये हमारे नेत्रों की खूबी है। और थोड़ा नीचे आइए, फिर है नाक। और नाक इज्जत की प्रतीक होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप पूरे कल्प में हाईएस्ट और होलीएस्ट हो, आपसे ऊंचा ना कोई महात्मा, ना कोई संत, ना कोई राजनीतिज्ञ। परम धाम में भी आप बाबा के बिल्कुल नजदीक बैठे हो, परम धाम में भी आपकी सीट सबसे ऊंची है। सतयुग त्रेता में भी धन, वैभव, स्वास्थ्य, सुंदरता, उसकी भेंट में द्वापर युग की आत्माओं को तो बहुत कम मिलता है। और जब द्वापर युग में यादगारें बनती हैं तो वो भी सर्वोत्कृष्ट बनती हैं। बड़े बड़े महल नुमा मंदिर बनते हैं, सोने हीरे जड़त के मुकुट और कपड़े पहनाए जाते हैं, कोई पवित्र व्यक्ति नहा धोकर के पूजा करता है, अपवित्र तो छू भी नहीं सकता है यादगारों को। और फिर संगम युग में तो आप हाईएस्ट होलीएस्ट बाप के बच्चे, मास्टर, पवित्र आत्मा बन जाते हो। तो बाबा ने कहा ये नाक आपकी ऊंचाई की प्रतीक है और उसके बाद कर्ण, कान। कानों से क्या प्रत्यक्ष करना है, एक तुमसे ही सुनूं और एक तुमको ही सुनाऊं। द्वापर युग से हमने अनेकों की सुनी तो क्या हाल हुआ, नीचे गिर गए, क्योंकि सुनाने वाले खुद ही संपूर्ण नहीं थे तो हमें संपूर्ण कैसे बनाते। अब बाबा कहते हैं ऊंचा चढ़ना है तो केवल एक की सुनो। एक बाबा से सुननी है, एक बाबा को दिल की बात बतानी है, और मनुष्य आत्माएं जो भी कुछ सुनाती हैं उसको श्रीमत के आधार पे जज करना। श्रीमत तो रोज मिलती है ना मुरली से, बाबा हमसे रोज बात करते हैं ना, अपनी बातें बताते हैं ना, तो जो आत्मा मुरली बहुत ध्यान से सुनेगी पढ़ेगी उसकी बुद्धि दिव्य बन जाएगी और वो समझ सकेगी कि मुझे किसी मनुष्य की बात नहीं सुननी है। अगर कोई राय देता है, सलाह देता है, तो भी उसको फिल्टर करना है, ज्यों का त्यों मानना नहीं है। तो इस प्रकार कान बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बनते हैं। जब वो केवल एक की सुन करके पवित्र बन जाते हैं और उसके बाद हमारा मुख है, तो बाबा कहते हैं जैसे देवता मुस्कुराते हैं, मंदिर के देवता हमने देखे हैं, वो ठहाके मार के नहीं हंसते, जोर जोर से नहीं हंसते, उनकी हंसी की आवाज नहीं होती, केवल स्माइलिंग होती है रूहानियत से भरपूर, ना अट्टहास होता ना ठहाके होते। तो ये मुख रूहानियत भरी मुस्कान से सबको खुश करी, ये हमारी रूहानियत भरी फीचर बने, हम मुस्कुराएं, आत्मिक भाव से मुस्कुराएं, किसी के गुणों को देख के मुस्कुराएं। कई लोग किसी की कमी कमजोरी पे हंसते हैं, कोई गिर जाए तो हंसते हैं, कोई मजाक करके हंसते हैं, वो वाली हंसी नहीं, आत्मिक भाव की मुस्कान, आत्मा की सुंदरता को देख करके मुस्कान। और थोड़ा नीचे आए गला, तो बाबा कहते हैं गले में कल्याणकारी बोल, ऐसा बोल बोलें जो सामने की आत्मा का कल्याण हो जाए 21 जन्म के लिए। बाबा कहते हैं साधारण भी नहीं बोलो, व्यर्थ भी नहीं बोलो, और जरूरत से अधिक भी नहीं बोलो। ज्ञान युक्त, योग युक्त, कल्याण युक्त बोलो। एक एक शब्द महावाक्य, एक एक शब्द यादगार बन जाए। तो ये हमारे गले का श्रेष्ठ कर्म है जिससे हम अपने भविष्य को प्रत्यक्ष करते हैं। और थोड़ा नीचे आइए, हार, हार तो हमारी हृदय को छू देता है, तो ईश्वर प्रेम का हार, मेरा हृदय ईश्वरीय प्रेम में लबालब है, केवल एक की याद है, एक के लिए समर्पण है, एक पर आत्मा कुर्बान है, एक का ही चिंतन है, एक की ही लगन है, एक में ही मगन है, एक के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है, लेन देन उसी से है, बातचीत उसी से है, संग उसी का है। तो ये ईश्वरीय प्रेम का हार। जो ऐसा हार पहनते हैं वो कभी जीवन में हार नहीं खाते, उनकी सदा विजय होती है। कैसी भी परिस्थिति उनके इस प्रेम को खत्म नहीं कर सकती, अडिग, अटल, अचल प्रेम एक प्रभु में। बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, बीमारी आएगी, तूफान आएंगे, लेकिन दो मिनट बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन प्रभु प्रेम डगमग नहीं हो सकता। और थोड़ा और नीचे आइए, कमर में करघनी, वो है दृढ़ता की प्रतीक। दृढ़ता सर्व गुणों का राजा है। अगर हमें अपने फ्यूचर से फ्यूचर को प्रत्यक्ष करना है, खुशनुमा फ्यूचर बनाना है, तो जीवन में दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। और दृढ़ता का मतलब क्या है? कुछ भी हो जाए करना ही है। एक होता है करना तो है, तो शब्द लगा तो संकल्प ढीला ढीला हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं करना ही है, सुनना पड़े, सहना पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन मुझे ये शुभ कार्य करना ही है, तो जब ऐसी दृढ़ता होती है तो सफलता मिल जाती है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, और जहां संकल्प में ढीलापन है वहां आती हुई सफलता भी लौट जाती है। तो कुछ भी हो जाए संकल्प को ढीला नहीं करना। परिस्थितियां उसको ढीला करने के लिए आएंगी, हिला करके देखेंगी, लेकिन अगर हम अडिग गए तो वो लौट जाती है। तो जो भी शुभ कार्य हमको करना है बाबा के लिए, तन मन धन जो भी समर्पित करना है, समय स्वास्थ्य संकल्प बाबा को जो अर्पण करने हैं, उसमें दृढ़ता चाहिए, फौलादी बल चाहिए। फौलाद कितनी सख्त होती है, कुछ भी उसको तोड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता। तो ऐसे हमारे संकल्प में भी फौलादी दृढ़ता हो, चट्टान की तरह अडिग हो, अचल हो, हलचल वाला ना हो, तब सफलता मिलती है। इसलिए मम्मा भी कहा करती थी, दृढ़ता सर्व गुणों का राजा है। आपको जीवन में कुछ भी करना है, कोई गुण भी धारण करना है, तो भी दृढ़ता का गुण सबसे पहले चाहिए। अगर हम दृढ़ी नहीं हुए तो हम अपने किसी भी कर्म में सफल ही नहीं होंगे। और उसके बाद है हाथ का बाजू बंद। ये है बाबा का राइट हैंड बनने का प्रतीक। अगर बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, फ्यूचर को प्रत्यक्ष करना है, तो भगवान का राइट हैंड बनना है, लेफ्ट हैंड नहीं बनना। राइट के दो अर्थ होते हैं, एक तो राइट माना शुभ और एक राइट माना ठीक। दुनिया में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमेशा राइट हैंड से करते हैं। और दूसरा राइटियस काम करना है, श्रीमत प्रमाण काम करना है, किसी के बहकावे में आके, किसी की देखा देखी में आके, कोई भी श्रीमत विरुद्ध कर्म नहीं करना। बाबा का निरंतर मददगार सहयोगी बन के रहना, बाबा के कार्य में निरंतर मददगार बन के रहना, यज्ञ मेरा है, बाबा का है तो मेरा भी है, तो इस यज्ञ की उन्नति ही मेरी उन्नति है। यज्ञ आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी शुभ भावना निरंतर रहे, उसको कहते हैं राइट हैंड। तो हम सब बाबा के राइट हैंड हैं। जब भी बाबा हमें याद करें, हम हाजी कहें, हाजिर रहें, तत्पर रहें हर कार्य के लिए। और उसके बाद है मर्यादाओं का कंगन। कहती है नियम संयम मर्यादा मानव जीवन का श्रृंगार है। कई लोग सोचते हैं कि मर्यादा बंधन है, लेकिन मर्यादा बंधन नहीं है, मर्यादा सेफ्टी है। जैसे कहते हैं नदी दो किनारों के बीच में बहती है, तो ये दोनों किनारे नदी की सुंदरता है, नदी की सेफ्टी है। अगर नदी किनारों को छोड़ के पार करके बहने लगे तो उसको फिर नदी नहीं, लोग बाढ़ कहते हैं। और अगर गंगा नदी भी बाढ़ के रूप में किसी के घर में घुस जाए तो लोग उसकी पूजा करेंगे या उसको कहेंगे कि वापस जा, क्या करेंगे? बाढ़ के रूप में गंगा मैया अगर घर में घुस जाए तो कोई पूजा नहीं करेगा। तो मर्यादा तोड़ करके कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसका सम्मान नहीं होता है। इसलिए बाबा ने हमारे लिए हर बात की मर्यादा बनाई, संग की संभाल, अन्न की संभाल, पहनने खाने की संभाल, रहने सहने की संभाल, हर बात में हमें अपने को संभाल के चलना है। बोलना देखना उठना बैठना, बाबा कहते हैं रिवाजी आपका कोई कर्म नहीं होना चाहिए, हर कर्म कमाल का होना चाहिए। देखने वाले कहें कि ये अल्लाह लोग हैं, न्यारे लोग हैं, इनका तो हर कर्म ही दुनिया से न्यारा होता है। तो ये कर्म न्यारे और प्यारे कब बनते हैं? जब इनमें मर्यादाएं होती हैं। हर बात में बाबा ने हमें मर्यादा सिखाई है। बोलने की मर्यादा है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। खाने की मर्यादा है, समय पर खाओ, कम खाओ, सात्विक खाओ, भोग लगा के खाओ। उठने की मर्यादा है, अमृत वेले उठो और बहुत प्यार से बाबा को याद करो। पहनने की मर्यादाएं साफ स्वच्छ सात्विक मर्यादित पहनो, तो हर बात में मर्यादा का कंगन बंधा हुआ है। किसी भी बात में मर्यादा का उल्लंघन हम कर नहीं सकते, क्योंकि जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा वो प्यारे बाबा के दिल पे चढ़ नहीं सकता, बाबा की शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर है अंगूठी, प्यारे बाबा से सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्ति में एक बहुत सुंदर भजन है ये, तो शिव बाबा के अब हम सगे बच्चे हो गए। सगाई माना उसके सगे हो गए, भक्ति में तो लगे थे, जानते ही नहीं थे उसको, लेकिन अब हम उसके सगे हैं, उसके रियल हैं, उसके बहुत करीब हैं। और उसके बाद है नेल पॉलिश। बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे 20 नाखून का जोर लगा करके भी कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। लेकिन कर्मातीत कब बनेंगे, तो ये नेल पॉलिश है 20 नाखून की, ऐसा पुरुषार्थ करें कि कर्म बंधन नष्ट हो जाए। कर्मातीत तभी बनेंगे जब कर्म बंधन नष्ट होंगे। और कर्म बंधन नष्ट कब होते हैं, जब हम कर्म करते हुए योग में रहते हैं, जब कर्म करते हुए कर्म और धर्म का संतुलन रखते हैं। केवल कर्म नहीं करना, लेकिन कर्म के साथ धर्म भी, कर्म के साथ योग भी। तो जब हम कर्म के साथ धर्म को रखते हैं तो उस कर्म की कीमत कई गुना बढ़ जाती है, वो हीरे तुल्य हो जाता है। और जब केवल कर्म है और उसमें धर्म नहीं है तो कर्म की कीमत कोड़ी तुल्य रह जाती है। अब दुनिया में लोग भागदौड़ तो बहुत करते हैं, कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन उस कर्म के साथ गुणों की धारणा नहीं होती है। इसलिए जीवन भर कर्म करने के बाद भी लास्ट में कहते हमें कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो कोड़ी के भाव गया कर्म। लेकिन हम बच्चे यज्ञ की कोई छोटी सी भी सेवा करते हैं तो अपने को भरपूर महसूस करते हैं और अंदर से निकलता वाह बाबा बहुत आनंद आया, बहुत भाग्य बना। तो हम जो भी कर्म धर्म के साथ योग युक्त होके करते हैं तो एक एक कर्म हमारा हीरे तुल्य बनता है। तो ये है हमारी नेल पॉलिश, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ। और उसके बाद पायजेब दिखाते हैं पांव में, सॉरी मेहंदी रह गया, हाथ में जो मेहंदी दिखाते हैं देवियों को, तो ये है सच्चाई की मेहंदी। बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई, जिसमें ये दोनों गुण होते हैं वो बच्चा मेरे दिल पे चढ़ता है। तो सच्चाई का मतलब है कि जो बात जैसी है अंदर है वैसी ही बाहर है। और सफाई का मतलब है कोई पुरानी बात, छल कपट की बात अंदर में जमा नहीं रखनी। जैसे घर की सफाई करते हैं तो कूड़ा करकट सब बाहर निकाल देते, तो अंदर से चित्त एकदम निर्मल हो। रामायण में कहा है निर्मल मन सो ही मम पावा, मोहि छल चित्र कपट न भावा। तो अंदर में कोई भी पुरानी बात, छल कपट की बात, ईर्ष्या द्वेष की बात, उसको हमने कूड़े की तरह से बाहर फेंक दिया। और सच्चाई माना अंदर बाहर पारदर्शी, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। तो बाबा को ये दोनों गुण बहुत पसंद है, तो ये सच्चाई की मेहंदी है। और उसके बाद पांव में पायजेब दिखाते हैं तो वो है श्रेष्ठ चाल चलन, आज बाबा ने कहा बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे खुश राजी हो, कोई आपसे दूसरे भी पूछते हैं क्या हाल है, तो उत्तर दो फरिश्तों जैसी चाल है और हाल खुशहाल है। तो ये खुशहाल की फरिश्तों जैसी चाल की निशानी है, पांव धरती पर नहीं है, खुशी में उड़ रही है, निरंतर उड़ती कला है, आगे ही आगे बढ़ते जा रही है। चाल चलन इतना श्रेष्ठ है कि एक एक कर्म का चरित्र बन रहा है, 2500 साल तक लोग उस चरित्र का गायन करेंगे, वो भक्ति मार्ग की किताबों में लिखा जाएगा। एक एक चलन इतना महान है, इतना यादगार के योग्य है। और उसके बाद है बिछुए, तो बाबा ने कहा बच्चे मेरे कदम पे कदम रखो, मुझे फॉलो करो, नकल करो। दुनिया की पढ़ाई में तो नकल करने की मना होती है, लेकिन यहाँ बच्चों को नकल ही करनी है। बाबा ने क्या किया उसकी नकल करो, मम्मा ने क्या किया उसकी नकल करो, बड़ी दादियों ने क्या किया उसकी नकल करो, बस नकल करनी है। तो ये बिछवे हैं नकल की प्रतीक, कदम पर कदम रखने की प्रतीक। उन्होंने कैसी अपनी धारणाएं श्रेष्ठ बनाई, कैसे सबके दिल को जीता, कैसे कदम कदम पर त्याग तप और सेवा की मिसालें बनाई, कैसे उदार दिल बने, कैसे अथक होकर के यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो वो बातें हम सुनते जाएं और उनको फॉलो करते जाएं, उनके पीछे चलते जाएं, इसी से हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। नया रास्ता बनाना तो मुश्किल होता है, लेकिन बने बनाए रास्ते पे दौड़ना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो आगे चलने वाले होते हैं वो रास्ते को साफ करते जाते हैं। तो हमारे बड़ों ने हमारे लिए रास्ते साफ करके रखे हैं, हमें तो केवल उन पे आंख बंद करके चलना है, सोचना भी नहीं है। बाबा कहता है जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनके लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ। तो हमको तो केवल आंख बंद करके चलना है, बाबा हमारे लिए सोचने का और जो भी हमारे प्रश्न है उन सबको सोल्व करने का काम बाबा करता है। हम केवल बाबा को याद करते चलें और जो रास्ता बड़ों ने दिखाया है कदम पर कदम बढ़ाते चलें, तो अवश्य ही हम अपने चलन से, चेहरे से, अपने फीचर्स से दुनिया को दिखा सकेंगे कि हम कितने बड़े बाप के बच्चे हैं, कितने बड़े कर्तव्य के निमित्त हैं। हमारा पहनावा भले साधारण है, लेकिन हमारा अंतर्मन बहुत महान है, महान से महान, ऊंची से ऊंची हम आत्माएं हैं और ऊंचे से ऊंचे कर्तव्य के निमित्त हैं। और एक दिन इस दुनिया को ऊंचे से ऊंची स्थिति में बना करके ला करके ही दिखाएंगे, ऐसा हम अपने कर्मों से संसार के सामने प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हमारा एक एक अंग बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगा, ये है अपने फीचर्स के द्वारा खुशनुमा फ्यूचर प्रत्यक्ष करना। ओम शांति।